अरपा रेडियो पर सुनिए विश्व पर्यटन दिवस पर एक विशेष बातचीत छत्तीसगढ़ के अनछुए आयाम इस विषय पर घुमक्कड़ और यात्रा संस्मरण लेखक ललित शर्मा से। आज विश्व पर्यटन दिवस है। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में रहने वाले ललित शर्मा, जो वर्तमान में दक्षिण कोसल के संपादक भी हैं और लंबे समय से घुमक्कड़ी के नाम पर मशहूर भी, अपनी हर छोटी बड़ी यात्रा को संस्मरण के रूप में ब्लॉग में वो बरसों से लिखते चले आ रहे हैं। सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज उनके संपादन में तैयार घुमक्कड़ जंक्शन 2020 स्मारिका, जो कि newsexpress.com की स्मारिका भी है, उसका विमोचन समारोह ऑनलाइन किया गया महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा। इस अवसर पर रायपुर के साहित्यकार श्री गिरीश पंकज जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जूम पर आयोजित, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव हुए इस कार्यक्रम में देश भर के साहित्यकार, घुमक्कड़ पर्यटक विशेषज्ञ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के अनछुए आयामों को सहेजती इस स्मारिका के विमोचन के पश्चात महामहिम श्रीमती अनुसुईया उइके ने ललित शर्मा जी को उनके 20 सालों के इस कार्यकलाप को जानते समझते हुए छत्तीसगढ़ में आगे और काम करते रहने के लिए 1,00,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके बाद हमने भी बातचीत की ललित शर्मा से अरपा रेडियो के लिए और जाना छत्तीसगढ़ में पर्यटन के अनछुए पहलुओं को। तो आइए सुने उनसे की गई बातचीत संज्ञा टंडन के साथ। अरपा रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी।
जी, आप सब लोगों को नमस्कार।
ललित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पर्यटन क्यों जरूरी है?
मनुष्य जब इस धरती पर पहली बार आया होगा या इस धरती का पहला मनुष्य जो होगा वो घुमक्कड़ी होगा। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि नए स्थानों को देखना, नई जगहों पर जाना, और वह इन सब चीजों में रोमांच महसूस करता है। इसीलिए स्थान परिवर्तन के साथ मनुष्य का मन और चेतना भी प्रभावित होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। इसलिए पर्यटन हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है।
ऐसे लोग जो पर्यटन के बहुत शौकीन तो होते हैं लेकिन साधन संपन्न नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए उन लोगों को?
पर्यटन और घुमक्कड़ी दो अलग अलग शब्द। थोड़ा मैं इसमें आपको अंतर, मूलभूत अंतर जो है वो बता देता हूँ। पर्यटन वह व्यक्ति करता है जिसके पास धन होता है और जिस स्थान पर वो जाना चाहता है, देखना चाहता है, उस स्थान के लिए एक अलग से जेब में पैसे रख कर जाता है और वो सोचता है कि उस स्थान पर मुझे इन रुपयों को पूर्ण रूप से पूरा खर्च करना है। और जो सुविधाएं उसको घर पर भी नहीं मिल पाती, वो सारी सुविधाओं की आकांक्षा उस पर्यटन स्थल पर जाकर करता है। दूसरा जो घुमक्कड़ होता है, घुमक्कड़ ये होता है कि वह कम से कम संसाधन में, कम से कम पैसे में बहुत सारी जगह देखना चाहता है, बहुत सारी जगहों पर जाकर उसकी संस्कृति को, उसके खान पान को, उसके रहवास को, वहाँ के इतिहास को, वहाँ इन सब को जानना चाहता है। तो इसलिए पर्यटन के लिए पैसे की आवश्यकता है, घुमक्कड़ के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही ललित जी आपने। तो आपको फिर घुमक्कड़ की श्रेणी में हमको रखना चाहिए क्योंकि आप जो हो, आपके लिए ये कहा जाता है कि आपके पैरों में घुमक्कड़ी के पहिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लेकर के विदेश यात्रा तक आपकी फेहरिस्त में शामिल है और हर जगह के संस्मरण भी हम लोगों के लिए मौजूद हैं कि आपने कहाँ क्या देखा, क्या समझा। तो आपको ये शौक कैसे और क्यों हुआ?
जी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि धरती का पहला मनुष्य घुमक्कड़ ही था। तो यह घुमक्कड़ी जो है व्यक्ति के जीन में होती है, उसके डीएनए में घुमक्कड़ी होती है। तो किसी पर घुमक्कड़ी हावी हो जाती है और कोई घुमक्कड़ी पर हावी हो जाता है।
अच्छा।
मेरे पिता जो है आर्मी में थे, सैनिक थे, और उसके पश्चात उन्होंने लगभग लगभग पूरा भारत घूमा था। 3 लड़ाइयां उन्होंने देखी, लड़ाई लड़ी जो है उस समय की। तो जब वो छुट्टी आते थे घर पर तो उनके संस्मरण मैं सुनता था, तो मुझे लगता था कि मुझे यही स्थान देखना चाहिए। तो कुछ पिताजी के साथ देखे और कुछ पिताजी के बाद जब मैं युवा हुआ तब मैं अपना बैग उठाया और फिर घूमने के लिए निकल पड़ा।
तो वाकई आपने जो है अपने अभनपुर के आसपास से लेकर के छत्तीसगढ़ और पूरा देश और अब देश के बाहर भी आपकी भूटान यात्रा और नेपाल यात्रा वगैरह के बारे में भी हमने संस्मरण पढ़े हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है बाहर के जो भी बड़े और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे आप गए हैं वहाँ आपने लिखा है, वहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिखते रहे हैं और लोग पढ़ते रहे हैं और उन चीजों को पढ़ करके वहाँ पे देखने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको जयपुर शहर जाना है या हमको अमृतसर का मंदिर देखना है। लेकिन आज हम आपसे छत्तीसगढ़ पर्यटन की बात करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत गिने चुने स्थल हैं जिनका नाम है, तो पहले तो हम उन पर्यटक स्थलों के बारे में जानना चाहेंगे और छोटी छोटी जगहों पे जो आपने देखा है बहुत सारी संभावनाएं लगता है हमको हैं छत्तीसगढ़ में पर्यटन की, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तृत रूप में।
जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर बहुत कम लोग ही जाते हैं। मैंने लगभग लगभग बहुत पूरा भारत घूमा है, नॉर्थ ईस्ट से लेके सब जगह केरल से लेके, और घूमने के दौरान जो है मैं मोटरसाइकिल को ज्यादा महत्व देता हूँ कि मोटरसाइकिल से निकलकर अच्छे सभी स्थानों पर ढंग से घुमा जाए, देखा जाए, वहाँ का इतिहास है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, वहाँ के लोग हैं, है ना, तो वहाँ की खेती किसानी, मेरे ही घुमक्कड़ी जो होती है वो समग्र दृष्टिकोण को लेकर होती है, मैं सभी चीजों को देखता हूँ, जिसको कहना चाहिए कि एक सांस्कृतिक अभिलेखी का दृष्टि से मैं देखता हूँ उसको। छत्तीसगढ़ में जब यहाँ पर लौट कर मैं पाता हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ में सारी चीजें दिखाई देती हैं जो किसी भी पर्यटन या प्रदेश के लिए जो आवश्यक होती हैं। जैसे हम किसी एक प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ आपको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्मारक ही मिलते हैं या कोई एक चीज उसका आइकान होता है ना। राजस्थान में जाएंगे तो किले महल मिलेंगे, सैंड मिलेगा, कोस्टल एरिया में जाएंगे तो हमको समुद्र मिलेगा, और किसी प्रदेश में जाएंगे तो आपको वन्य अभ्यारण्य मिलेंगे, और किसी प्रदेश में जाएंगे तो आपको मंदिर मिलेंगे, प्राचीन स्मारक मिलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ धरती का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर इन स्थलों की मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पा रही।
जी हाँ, बिल्कुल, उंगलियों पे गिने हुए नाम है कि तीरथगढ़, चित्रकूट, तो, सिरपुर।
जी जी जी, तो मैं आपको एक संस्मरण बताता हूँ मेरा इसमें। जो उत्तराखंड से होकर जो हम मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं पिथौरागढ़ होते हुए, उसी रास्ते पर एक जगह पड़ती है गंगोली हाट।
अच्छा।
और गंगोली हाट से लेफ्ट टर्न करेंगे तो लगभग 12-15 किलोमीटर नीचे जाकर एक पाताल भुवनेश्वर एक जगह है। उस पाताल भुवनेश्वर में एक गुफा है और उस गुफा का इतना बड़ा, इतना सारा महिमा मंडन किया गया है कि लोग उस गुफा तक पहुंचते हैं और उस गुफा में उतर कर देखते हैं, और उस गुफा को स्कंद पुराण से भी जोड़ दिया गया है और दूसरे स्थानों से भी जोड़ दिया गया है। जब वहां पर मैं वहां पर पहुंचा तो देखा प्राकृतिक स्थल तो प्रकृति की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से उस गुफा का, छोटी सी गुफा का महिमा मंडन किया गया है, तो उसको लगा कि हम कहीं इस मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए कुटुम्बसर की कितनी बड़ी गुफा है, जो यहाँ से चलकर और जाकर बोरा की गुफाओं तक निकलती है, जो है लगभग 45 किलोमीटर धरती के अंदर अंदर भूगर्भ में है। कुटुम्बसर की गुफा है, आपकी दंडक गुफा है, और भी ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं, तो इनका उतना महिमा मंडन, इतना उतना प्रचार नहीं हो सका।
जो आपने बोरा कैव का नाम लिया कि वो उड़ीसा में आती है, लेकिन उसका उसी रूप में महिमा मंडन किया गया है, वो
उड़ीसा, उड़ीसा में नहीं है, वो आपका विशाखापट्टनम के आंध्रा में है, आंध्रा में है, तो उसका बोरा गुफा का महिमा मंडन हो गया। लेकिन पाताल भुवनेश्वर जैसी जगह में जहाँ पर लोग जाते हैं उसका महिमा मंडन होना, उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्थान पर मैं गया, उस स्थान पर एक शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग जो है ग्रेनाइट का शिवलिंग है, ग्रेनाइट का शिवलिंग होने के कारण उसमें बहुत अच्छी पॉलिश हुई है, तो जब उसमें जल डालते हैं तो चमकता है वो पत्थर जो है शिवलिंग का, तो उसको लेकर महिमा मंडन किया गया, तो वहां लोग पहुंचते हैं वहां पर। तो ऐसे छोटे छोटे स्थानों का महिमा मंडन करके लोग जो है वहां पर पर्यटकों को खींच लेते हैं, ऐसी स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में मुझे पैदा होती नहीं दिखाई दी। तब मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर ही मुझे अपने आप को केंद्रित करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना चाहिए। तो उसके बाद मैं लगभग 10 साल से lalit.com और विभिन्न जो हमारी वेबसाइट है newsexpress.com, dakshinkosal.com और भी जगहों पर, तो मैं लगातार फिर छत्तीसगढ़ के छुए अनछुए पर्यटन स्थलों पर लिखता रहा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अब आप कहेंगे तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है ना, तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल में यहाँ पर देखिए कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने सारे अभयारण्य हैं, इंद्रावती है, कांगेर है, गुरु घासीदास है, अचानक मार है, बादल खोल है, बारनावपारा, सेमर सोत, चीता नदी, तमोर पिघला, भैरमगढ़, भोरम देव, गोमरडा, पामेड़, उदंती अभयारण्य, इंदिरा अभयारण्य, कानन फेंदारी, मैत्री बाग, चिड़िया, कितनी सारी जगह है। और तो और यहाँ पर आपको स्नेक पार्क भी मिलता है, तो यहाँ पर कोटवी सोनार का मगरमच्छ जैसा पार्क भी है ना। एक तरफ यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिन जो शास्त्रों में वर्णित है, चतुर्थपला गंगा है, शिवनाथ नदी, इंद्रावती, हसदेव, अरपा, पैरी, सोंडू, मनियारी, महान, हाफ नदी, तो लीलागर, जोंक, डंकनी, संकनी, कितनी सारी नदियां हैं यहाँ पर। और इन्हीं नदियों के द्वारा बनाए गए जो जलप्रपात हैं, जो झरने हैं, इतने सुंदर झरने हैं। अभी बरसात का समय है, इस समय आप जाकर देखें तो छत्तीसगढ़ का मानसून जो है ऐसा लगता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो छत्तीसगढ़ में ही है। इन सब चीजों को देखकर हांदावाड़ा जैसा बड़ा झरना जो है जिसमें बाहुबली की शूटिंग करने के लिए एक बार इसको चयन किया गया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने के कारण यहाँ पर नहीं देखा जा सकता। प्राकृतिक स्थल यहाँ पर आपको यहाँ पर ताता पानी भी मिलता है, यहाँ पर आपको उल्टा पानी भी मिलता है, यहाँ पर आपको वेटलैंड भी मिलती है, हिलती हुई धरती भी मिलती है मेन पार्ट में है। उसके साथ हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल में शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन तीर्थ से लेके बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरे आपको यहाँ से वहां तक मिलेंगे। और इसके साथ ही भगवान राम का लंका गमन मार्ग भी यहीं से जाता है, भगवान राम यहाँ के कण कण में व्याप्त हैं। तो वैष्णव क्षेत्र के रूप में यहाँ पर पद्मावती नगरी राजिम है, शिवरी नारायण है, दूधाधारी मठ है, तुरतुरिया है, रमई पाठ है ना। और इसके साथ ही शक्ति स्थलों में दंतेश्वरी है, दंतेवाड़ा है, महामाया रतनपुर है, बमलेश्वरी डोंगरगढ़ है, खल्लारी माई खल्लारी है, महामाया अंबिकापुर है और अन्य स्थल है। शैव धार्मिक स्थलों के रूप में राजिम पंचकोशी है जिसमें कुलेश्वर, पटेश्वर, चंपेश्वर, बमलेश्वर, कर्पूरेश्वर, फणिकेश्वर, विशाल प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वरनाथ है, बूढ़ा महादेव रतनपुर है, देवगढ़, सरगुजा इत्यादि है। जैन तीर्थ में ऋषभ तीर्थ, दमोधारा है, नागपुरा दूर तीर्थ है, बौद्ध तीर्थ के रूप में शिरपुर प्रसिद्ध है और रामायण कालीन दक्षिण पथ मार्ग को यहाँ से गुजरते हुए हमें कदम कदम पर धार्मिक दर्शन स्थल मिलते हैं। सरगुजा के पाठ क्षेत्र हैं और इन पाठ क्षेत्रों में मैन पाठ जो है, मैन पाठ आपका एक प्रमुख यहाँ का दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, जहाँ पर आपको जलजली है, जहाँ पर आपके झरने भी हैं, है ना, जहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मैन पाठ की जो तराई है ऊंचाई से, वहां से जो है मतिरंगा नदी भी वहां से निकलती है जिसको रेणुका नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थान है। और खास बात मेन पार्ट की ये है कि जब तिब्बत का अधिग्रहण चीन ने किया तब 1962 में तिब्बत के लोग जो है भारत आए और उसके बाद उनको भारत के तीन स्थानों पर बसाया गया, पहला हिमाचल के धर्मशाला में, दूसरा छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में और तीसरा कुर्ग में बसाया गया कर्नाटक के, क्योंकि ये तीनों स्थल जो है ठंडे स्थल थे और यहाँ पर आज भी मैन पार्ट में तिब्बती रहते हैं। वो अपना ऊन के वस्त्रों का काम करते हैं, खेती करते हैं, ताऊ की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं उसके साथ ही जो है, और आज उनकी संस्कृति आपको मैन पार्ट में जाते ही दिखाई देती है। कितनी सारी जगह है हमारे पास धार्मिक पर्यटन के लिए
जी।
उसके साथ ही पुरातात्विक पर्यटन स्थल है जो आपको दूसरी शताब्दी पहले से लेकर आज तक के वर्तमान में आपको मिलेंगे, जिसमें आपका रामगढ़ की गुफा है, वहां पर क्या बोलते हैं ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन है, हैं, और हर चौका से गुफाओं से चालू होकर आपका हमारे पुरातत्व स्थल होते हैं। बारसूर में ढोलकल है, नारायण पाल है, गुप्तेश्वर है, ढोंडेरपाल है, भोंगापाल है, आरंग, रतनपुर, राम टेकरी, मतकू, डबरूगढ़, भोरम देव, मड़वा महल, पचराही, चतुर्भुजी, धमदा, मल्हार, नक्शा मंदिर, जांजगीर, शिवरी नारायण, काला, सिरपुर, खल्लारी, जांजगीर, नगपुरा, करकदा, देव बलौदा सिंघोड़ा बालो तुरतुरिया पलारी गिरौदपुरी रामाखेड़ा सिहावा चंदखुरी दमोधारा पाली लाफागढ़ चैतुरगढ़ सरगुजा में सीता बेंगरा है ना
खत्म नहीं हो रही है। इतनी सारी जगह है, हम अलग अलग नाम जरूर सुनते हैं लेकिन जब आप इस तरह की फहरिस्त बता रहे हैं तो लग रहा है वाकई हम बहुत समृद्ध हैं छत्तीसगढ़ वासी पर्यटन के मामले में।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको प्रागैतिहासिक काल से यहाँ पर मानव रहता है। जब प्रागैतिहासिक काल से मानव रहता है तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के भी यहाँ पर अवशेष हमको मिलते हैं। उषा काल में मानव सभ्यता के उषा काल में छत्तीसगढ़ में आदि मानव के संचरण का भी निवास रहा है। इसके प्रमुख प्रमाण आपको रायगढ़ जिले के सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, बसना घर है, बोतलदा है, पुंगना पहाड़ है, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी है, और उसके बाद आपके क्या बोलते हैं नए स्थान जो है सुअरलोट कोरबा के पास में है। तो ये सारे स्थान यहाँ पर आपको मिलते हैं। और उसके साथ एक नया मैंने इस वर्ष पर्यटन का एक नया आयाम जो है यहाँ पर कृषि पर्यटन।
अच्छा,
कृषि पर्यटन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और भूमक्कड़ वैसे भी जो है संस्कृति के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखेरता है। ये जो चीजें हमको यहाँ से वहां तक गई हुई दिखती है, संस्कृतियों का जो आदान प्रदान होता है भूमक्कड़ के द्वारा ही होता है। तो उसी तरह किसान भी पर्यटन कर सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए आपका कि कृषि पर्यटन भी यहाँ पर हो सकता है। अगर कोई देखना चाहे कृषि कैसे होती है तो जसपुर में चाय की खेती हो रही है ना। सरगुजा के पाट प्रसिद्ध हैं, पाट यानी पठार। यहाँ के ठंडे क्षेत्रों में टाऊ है, आलू है, सेब है, आड़ू है, आलूचा है, अंगूर है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती की खेती हो रही है। तो महासमुंद में अमरूद की खेती हो रही है, तो अंबिकापुर में लीची जीरापुर धान की खेती हो रही है, तो बस्तर में कांकेर में सीताफल चिरौंजी काजू नारियल के साथ और भी दूसरी कंदी फसलें वो हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ चावल की 23,000 किस्में संरक्षित हैं।
अच्छा,
और जिसका यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है और इसको प्रतिवर्ष तकनीकी मापदंडों के हिसाब से उगाया भी जाता है और यह विश्व का दूसरा बड़ा संग्रह है। तो इस तरह जो है छत्तीसगढ़ भी कृषि पर्यटन के लिए भी बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर आप साहसिक पर्यटन भी कर सकते हैं जिनको एडवेंचर के जो शौकीन हैं। जैसे आप यहाँ से बस्तर में ढोलकल जा सकते हैं, 6 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। आंधावाड़ा जा सकते हैं, वहां पर जाने के लिए आपको नाव से इंद्रावती पार करना पड़ता है। बार नावापारा में सिंगाधुरुआ की ट्रेकिंग कर सकते हैं। तो मैन पार्क की पहाड़ियों में भी लोगों ने ट्रेकिंग के रूट ढूंढ लिए हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो क्या नहीं है छत्तीसगढ़ में।
अच्छा ललित जी, अपने सब तरफ जितनी भी अभी नाम लिए इसमें अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मतलब करीब करीब छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है, लेकिन एक क्षेत्र छूट रहा है पेंड्रा की तरफ का, जो अमरकंटक हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था जो मध्य प्रदेश में चला गया डिवीजन के बाद, और वो एरिया जहां से नर्मदा नदी, सोन नदी निकलती है, उस क्षेत्र में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो वहाँ के बारे में कुछ मतलब जानकारी है कि क्या क्या जगह है वहाँ पे, और जैसे राजमेरगढ़ का पहाड़ है जो अमरकंटक के पैरेलल है, उसको एक बार अपने छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल और यहाँ का अमरकंटक बनाने की बातें चली थी, तो उस तरफ क्या होना चाहिए।
देखिए पेंड्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेंड्रा की पहली बात तो पेंड्रा की जमींदारी है। छत्तीसगढ़ में जमींदारियों में की बात करें तो सतगढ़ा कहलाता है वो इलाका, है ना। सातगढ़ ये तंवरों के सातगढ़ रहे हैं, जो तंवर वहां के जमींदार रहे हैं कल्पुरी कालीन, जिसमें लाफागढ़ है, मातिनगढ़ है, आपका पेंड्रा है, केंद्रा है, पौड़ी उपरोड़ा है, कोरवा है, चांपा है, छुरी है, ये मिला के सातगढ़ है ना। तो ये सातों गढ़ बहुत ही प्राकृतिक क्षेत्रों में यहाँ पर प्राकृतिक स्थल हैं। यहाँ पर आपको पुरातात्विक स्थान भी मिलते हैं, उसके साथ ही गुफाएं भी हैं। ये जो पहाड़ियां हैं अमरकंटक की, आमरकूट की, इन गुफाओं में पहाड़ियां भी हैं, गुफाएं भी हैं इन पहाड़ियों में। आपका जैसे बिल्लमगढ़ की गुफा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सोनमुड़ा पेंडर रोड से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है सोन बच्चरवार या सोनमुड़ा बोलते हैं। वह सोनमुड़ा जो है सोन नदी का उद्गम है वो
जी।
तो सोन नदी का उद्गम पहली बार मैंने यहाँ पर मैंने ही लिखा था, नहीं तो लोग जो है सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से ही समझते थे। तो वहाँ पर सोन नदी का उद्गम है, तो वहाँ अमरकंटक के आसपास भी बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे देखने के लायक हैं, जो पिंडर रोड के आसपास हैं, है ना। और वो छूटा नहीं है, वो हमारी दृष्टि में है और वहाँ पर मैं जा चुका हूँ
जी। वहाँ बहुत छोटी छोटी जगह है, खोंगसरा के पीछे, बेलगहना के पास
जी जी,
और छोटे छोटे झरने हैं। उदरदा नाम की एक लाल पत्थरों वाली जगह है जहाँ पे छोटे छोटे झरने बह रहे हैं, और बरसात के समय जो यहाँ पे बरसाती नदियाँ निकलती हैं, जो बिलासपुर मनियारी वगैरह तक आती हैं, अरपा नदी उधर से ही बिलासपुर की नदी निकली हुई है। तो समृद्ध क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी वो इलाका बहुत है, लेकिन उस तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया है छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में, ऐसा मुझे महसूस होता है।
इसका प्रमुख कारण यह है कि अमरकंटक जो है वो चला गया मध्य प्रदेश में
जी हाँ,
और मध्य प्रदेश में अमरकंटक के जाने के कारण जो है पिंडरा उपेक्षित हो गया
जी हाँ। अब वो अलग से जिला बन गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो क्षेत्र भी इस रूप में भी डेवलप होगा।
बिल्कुल,
छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और आप अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैंने एक स्लोगन दिया है और वो स्लोगन ही इस पर्यटन के लिए एक प्रमुख आधार है।
क्या है वो स्लोगन?
पर्यटन के चार प्रमुख आधार, सुरक्षा, साधन, आवास, आहार।
वाह।
कोई भी पर्यटक या घुमक्कड़ उस स्थान पर ही जाना पसंद करता है जहाँ उन्हें सुरक्षा मिले, वहाँ पहुँचने का साधन मिले और पहुँचने पर उसे आहार मिले, और अगर कहीं विलंब हो गया, रात को रुकना चाहे तो उसे आवास मिले। ये पर्यटन के चार आधार स्तंभ हैं। जब तक हम किसी भी पर्यटन स्थल में इन चारों चीजों का विकास नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पाएंगे। और सुरक्षा तो बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर भी हम पर्यटन करने जाते हैं वहाँ पर जो है इन सारी चारों चीजों को पर्यटक देखता है और उसके बाद वहाँ पर पहुँचता है। देखिए, पर्यटन जो है आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। किसी भी राज्य की जीडीपी में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारे सामने में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर व्यक्ति अगर बाहर से भी विदेश से भी पर्यटक आता है एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहले ट्रेन की टिकट लेकर वो उधर ही पहुँचता है। इसमें पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा जो है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में और कोई चीजें नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का मुख्य जीडीपी का साधन जो है, राजस्व का आय का साधन जो है, वो है पर्यटन
जी,
है ना। तो वहां पर जो है पर्यटकों को सम्मान मिलता है, वहां पर पर्यटकों को सुरक्षा मिलती है, उनको आवाज भी है, वहाँ पर लोग ट्रेकिंग भी करते हैं और सारी चीजें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो जब तक हम पर्यटन के साथ आम आदमी को नहीं जोड़ेंगे यहाँ के, जब तक आम आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि पर्यटन से आमदनी होती है, तब तक जो है पर्यटन का यहाँ पर क्षेत्र में विकास संभव नहीं। आम आदमी को उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई पर्यटक आ रहा है, होम स्टे की सुविधाएं हैं, रात को अगर कोई शरण मांगता है तो उसको एक घर दे दिया जाए, उसको खाना दे दिया जाए, ठीक है, उसके बदले में आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो आजकल जो है होटलों में और अन्य स्थानों पर रुकने के बजाय जो है पर्यटक पेइंग गेस्ट के रूप में आपके घर में रुकना चाहता है बाहर सारा आकर, क्योंकि वो आपकी संस्कृति को जानना चाहता है, आपके खान पानों को जानना चाहता है। तो जब तक हम ये सारी चीजें यहाँ पर हम निश्चित नहीं करेंगे, तब तक पर्यटन जो है यहाँ पर स्थापित होना बहुत कठिन कार्य है। सिर्फ प्रचार के दम पर, अखबारों में विज्ञापन के दम पर जो है पर्यटन स्थापित नहीं हो सकता।
चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ललित जी, छत्तीसगढ़ पर्यटन के बारे में भी और विश्व पर्यटन दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अरपा रेडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
छत्तीसगढ़ में पर्यटन के अनछुए आयाम विश्व पर्यटन दिवस पर घुमक्कड़ और यात्रा संस्मरण लेखक श्री ललित शर्मा से बातचीत अभी आपने सुनी अरपा रेडियो पर।
ये है अर्पा रेडियो।